नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कल गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि राजभवन और राजनिवास के नाम बदलकर लोक भवन और लोक निवास किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे विकसित और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तिरुवनंतपुरम की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति नौसेना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगी। श्रीमती मुर्मू आज नौसेना के परिचालन प्रदर्शन का अवलोकन भी करेंगी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और चुनाव सुधारों पर लोकसभा में अगले सप्ताह विशेष चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। वंदे मातरम पर 8 दिसंबर और चुनाव सुधारों पर 9 दिसंबर को चर्चा होगी।
मीटिंग अच्छी तरह से हुई है और सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। मैं सब पार्टी के नेताओं को फिर से अपील करना चाहता हूं, हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले।
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संचार साथी ऐप पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक की डिजिटल सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार ऐप को डाउनलोड कर इसका लाभ उठा सकते हैं और किसी भी समय अपने फोन से इस ऐप को हटाया भी जा सकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में 4th काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के 1400 से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी और बांग्ला भाषाओं को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से किसी एक भाषा का चयन करेंगे और इसकी पूरी लागत सरकार वहन करेगी। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को सहायता प्रदान की जा रही है। श्रीलंका भयानक बाढ़, तबाही, जानमाल के नुकसान और बड़े पैमाने पर भूस्खलन से जूझ रहा है। इस आपदा में मृतकों की संख्या 465 हो गई है, जबकि 366 लोग अब भी लापता हैं। सभी 25 जिलों में 1,50,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच भारत ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने संबंधी पाकिस्तान के बयान को खारिज कर दिया है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि श्रीलंका में मानवीय सहायता ले जा रहे पाकिस्तानी विमान के लिए हवाई क्षेत्र अनुमति का आग्रह कल दोपहर 1 बजे इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को मिला। उन्होंने कहा कि सरकार ने आग्रह को तुरंत स्वीकार कर शाम 5:30 बजे हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति प्रदान की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। श्री पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कल बताया कि मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 और लड़ाकू विमान SU-57 के सौदे राष्ट्रपति की यात्रा के एजेंडे में शीर्ष पर हैं। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज शुरू होगी। बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा और मुख्य दरों की घोषणा करेंगे। गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना को लाल किला कार विस्फोट मामले के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। उन्हें मामले की मुकदमा और अन्य कानूनी कार्रवाईयों के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुराना को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से 3 वर्ष के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रायपुर में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।